हर संबंध जोड़ दिया है, न्यारा होकर रहते हैं, जिनका बाबा से बहुत प्यार है, किनके पास आप भी जाएंगे दुनिया में? जहां बहुत प्यार होगा और जहां अपनापन भी बहुत होगा, वहां मनुष्य बार बार जाता है ना, अपनेपन का प्यार सबको ज्यादा आकर्षित करेगा। बाबा के मन में तो हमारे लिए अपनापन है, मेरे बच्चे हैं, ये तो जो माता पिता हैं यहाँ लौकिक में वो जानते हैं उनके मन में अपने बच्चों के लिए क्या क्या होता है। बच्चों के मन में कम रहता है, ठीक है ना, उनका प्यार बढ़ता रहता है, उनको पता भी नहीं चलता हमारे माँ बाप हमें कितना प्यार करते हैं, ये भी सत्य है। यही हाल बाबा के बच्चों का है, उन्हें कम पता चलता है कि बाबा हमें कितना प्यार करता है। कितना करता होगा? बहुत, बस बहुत, बस। और कुछ बोल लो, मेजरमेंट नहीं, इतना प्यार करता है कि वो नहीं देख सकता कि मेरे बच्चे दुखी हों, वो नहीं देखना चाहता कि उसके बच्चे सुखी न हो, खुश न हो। वो प्यार में, ये प्यार ही तो है जो आ रहा है, नहीं तो उसके रथ का हाल तो सब जानते हैं ना, फिर भी वो रथ को भी शक्ति देकर आता है। और अब डायरेक्ट आने लगा है, दो बार से डायरेक्ट आने लगा, पता क्यों आने लगा है? प्यार ज्यादा हो गया। कल तो एक ही मिनट में आ गया और अपनी पहचान दे दी दुआ का हाथ उठाकर, नहीं तो समझेंगे नहीं ना बहुत सब के क्या हो गया, इंतजार करते कि दादी ध्यान में जाए फिर आंख खोले, अब तक यही रीति रही है। क्यों आ गया? व्रत कमजोर है। रहस्य यही है, कईयों को संकल्प तो चलते हैं ना, इसलिए मैं उत्तर देता हूं। और जब दादी की आवाज आने लगी, बड़ी आवाज, तब भी बहुतों को संकल्प चला कि ये क्या हो गया। संकल्प तो चलते हैं, मनुष्य के पास बुद्धि है तो वो अपनी बुद्धि को दबा के तो नहीं रख सकता ना कि नहीं कुछ नहीं सोचना है, जो हो रहा है वो ठीक ठाक है, उसके संकल्प चलते हैं। ध्यान बहुत कम लोग जानते हैं कि ध्यान में जब कोई आत्मा जाती है तो आत्मा का ब्रेन के कई केंद्रों से कनेक्शन कट ऑफ होता है। इसलिए बाबा के शब्दों में ध्यान में जाना माना आधी मृत्यु, ये भगवान के शब्द हैं मेरे नहीं, बता दूं कब कहा, दादी प्रकाश मणि जब फुल फॉर्म में थी, दादी को गए कितने साल हो गए, आठ साल और पहले कैद कर लो, 14-15 साल पहले की बात है, तो मुरली चलाते हुए शांति वन में कोई बहुत गहरी बात आ गई जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था, तो दादी वहीं से कह रही थी गुलजार सुनो, दादी अपने कमरे में थी ना गुलजार दादी, गुलजार सुनो अभी ध्यान बाबा के पास जाओ और ये उत्तर लाओ, अभी जाओ, सुनती हो गुलजार, अभी जाना, हो सके तो क्लास में ही बता देना क्या कहा बाबा ने। तो फिर तो गुलजार दाई तो तब नहीं गई दादी ने, गुलजार दाई ने बताया कि दादी सवेरे ही बाबा खींचता है, कल जाऊंगी। अभी दादी चीफ थी, उसके लिए तो कुछ कह नहीं सकते ना। दो चार दिन के बाद बाबा आए और बाबा ने ये बात वर्णन की कि देखो दादी का तो प्यार है, कुमार का दादी का, तो वो तो चाहती है फटाफट बाबा के पास जाओ, लेकिन बच्चे ध्यान में जाना माना आधी मृत्यु। अब गुलजार दादी को ध्यान में जाना है बाबा को लाने के लिए, तो ब्रेन वीक है पहले ही, तो और वीक होगा ना। तो बाबा अब ये नहीं चाहता, इसलिए उसको ध्यान में नहीं लिया और डायरेक्ट प्रवेश कर लिया, जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते थे। ब्रह्मा बाबा कोई ध्यान में नहीं जाते थे, स्टेज पर आकर बैठे और शिव बाबा आए सेकंड में। तो इसलिए बाबा आते हैं, और जब बाबा देखता है लास्ट में कि ब्रेन की बैटरी अब डिस्चार्ज हो गई है, आगे नहीं चलेगी, तो बाहर आ जाता है पीछे, उनके मुख को यूज करता है, लेकिन करता सब बाबा है, होता बाबा है और मुख यूज करता है दादी का, मतलब फिजिकली कर लेता, एंटर नहीं होता, अंदर नहीं रहता, इसलिए आवाज फुल हो जाती है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये रहस्य है, बाबा जब चाहे प्रवेश कर ले, निकल जाए, उसके हाथ में है। और वैसे भी वो ऑल पावरफुल है, सर्वशक्तिवान, और ये कोई भी आत्मा भी जो है शरीरी होते हैं, फरिश्ते भी ऐसा करने में सक्षम होते हैं। पीछे मैंने यहाँ एक शायद अनुवाद सुनाई थी जो इस रहस्य को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। रहस्य महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर का है। कौन कौन बैठे महाराष्ट्र के यहाँ? ज्ञानेश्वर बैठे हैं। तुम भी महाराष्ट्र के? ठीक है, तो तुम्हारी बात है। तो ये संत ज्ञानेश्वर, चार भाई बहने थे छोटे, इनके बाप की किसी बात के कारण पंडित लोग इन्हें मान्यता नहीं दे रहे थे ब्राह्मण की। ये ब्राह्मण थे, अब ब्राह्मणों को नौकरी तो करनी नहीं थी, भिक्षा याटन और कर्म कांड करके पालना करनी थी अपनी, तो पंडित जो वहां की परिषद थी महाराष्ट्र की, वो उनको मान्यता नहीं दे रही थी, तो कोई उनको कुछ देता नहीं था। तो एक तो उसकी बहुत अच्छी चर्चा है, कोई उसको तवा नहीं दे रहा था, आग नहीं दे रहा था उसकी बहन को, तो संत ज्ञानेश्वर बच्चे की तरह हो गया और कहा लो मेरी पीठ पे रोटी पका लो, और पीठ पे रोटी पका ली। फिर उसका बड़ा भाई आया, उसने जब देखा तो कहा नहीं, इन सिद्धियों का प्रयोग इस तरह नहीं करना है, पर बेचारे भूखे थे तो क्या करते। तो गए पैठन, एक जगह है गुजर महाराष्ट्र का तीर्थ है वो, वहां पंडितों की परिषद थी, तो पंडितों का जो अध्यक्ष था वो बिल्कुल गरम, और उनकी मजाक उड़ाए गए, ये चारों बच्चे क्या क्या करेंगे ये। तो फिर गुस्से में आके उसने ज्ञानेश्वर को कहा कि अगर तुम में कुछ ताकत है तो ये दो बैल जा रहे हैं, इनसे वेद मंत्र बुलवाओ। सोचा भाग जाएंगे लड़के। संत ज्ञानेश्वर, तब तक वो संत नहीं था, ज्ञानेश्वर खड़ा हुआ, और एक दो मिनट के बाद बैलों ने वेद मंत्र उच्चारण करने शुरू कर दिए। अब पंडितों के कान खड़े हो गए, ये क्या हो रहा है। बाहर आ गए सब, और लोग आ गए, बैल वेद मंत्र उच्चारण कर रहे थे। कैसे हुआ ये? उसने अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया, वेद मंत्र ज्ञानेश्वर उच्चारण कर रहा था, मुख ले लिया बैलों का। तो ये सिद्धि भी है हमारे योग दर्शन में। तो वो तो शिव बाबा है ऊपर वाला, उसके लिए तो खेल है, वो जैसे जब चाहे कर सकता है। इसलिए कभी भी इन बातों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, हमारा नीचे कह रहा हमें बाबा कंफ्यूज हो गया या हम। मैंने कहा तुम कंफ्यूज तुम हुए हो, जो रहस्यों को नहीं जानते, वो सोचते हैं ये क्या हो रहा है, पर सब कुछ नियम अनुसार परफेक्ट हो रहा है, इसमें कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं। जिनको डाउट है माना, उनके पास ये सब ज्ञान नहीं है, पहचान नहीं है, और बाबा को पहचानना ये बहुत सूक्ष्म बात है। बाबा ने कह दिया है, मैं यहाँ तो क्लास में सुनाई है बहुत बार, बाबा की बात है, दो बातें सुना देता हूँ। अब से 55 साल पहले भगवान बोल आए थे, मैं तुम्हें अपना संपूर्ण ज्ञान देकर साइलेंट हो जाता हूँ। अब ज्ञान उसने सारा दे दिया, उसे ज्ञान देने की जरूरत नहीं। कोई सृष्टि का ऐसा रहस्य नहीं जो उसने न खोल दिया हो, मन की शक्तियों के रहस्य, योग की शक्तियों के रहस्य, प्रकृति और आत्मा के संबंधों के रहस्य, परमात्मा क्या है और आत्मा क्या है, ये सब रहस्य जो शास्त्रों में उलझे हुए थे वो बाबा ने सब सहज भाषा में खोल दिए हैं। ज्ञान पूर्ण हो गया, अब बाबा शांत होता जाएगा दिनों दिन। अब देख रहे हैं मुरली नहीं चलती, मिलन और प्यार दो ही चीज है बस। तो पहले ज्ञान का सागर का पाठ बजाया और अब प्यार के सागर का। अब ये प्यार की पालना भी बहुत सुंदर है। वो लोग जो पहली बार आ रहे हैं, जिनके सामने कोई कंपैरिजन नहीं है, वो अति आनंदित हैं। कितने मिले होंगे आज मुझे नीचे, अति आनंदित, वाह बाबा ने भरपूर कर दिया हमें। अब वो तो बाबा जाने क्या दे दिया अंदर ही अंदर, वो हम तो नहीं जान सकते ना, वो तो परमात्मा जाने और आत्मा जाने। जो कल भी कहा ना, बच्चों का प्यार तुम जानो या मैं जानू, यही बात है। दूसरी बात बाबा की बहुत गुह्य और अति सुंदर, जब तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान जाओगे तो तुम संपूर्ण बन जाओगे। इसलिए बाबा की शक्तियों को पहचानना, उसको पूरी तरह जानना, ये एक बहुत सूक्ष्म बात है। मोटी बात नहीं कि वो ज्योति स्वरूप है और परम धाम में रहता है, ये तो कॉमन बात है। फिलोसॉफी को तो सबने जान लिया, परंतु उसकी गुह्यता क्या है, वो क्या है उसके दिल में हम सब के लिए, ये जानना तभी संभव होगा। जो आत्मा जितना जितना स्वयं को जानती जाएगी, स्वयं को, उतना उतना बाबा को भी जानते जाएंगे। और स्वयं को वही जान सकेंगे जो लंबा काल स्वमान में आत्मभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस में रहते हैं। इसके बिना हम स्वयं को भी नहीं जान सकेंगे और बाबा को भी नहीं। इसलिए बाबा ने कहा है, जो बहुत पुराने हैं, जिन्होंने मुरलियों पर बहुत ध्यान दिया वो जानते हैं, तुम्हारी शुरुआत भी इससे हुई मैं कौन, और एंड भी इसी से होगा मैं कौन। शुरुआत हुई मैं आत्मा हूँ और एंड होगा मैं कौन सी आत्मा हूँ। हीरो एक्टर्स सब प्रख्यात हो जाएंगे, इस सृष्टि के हीरो एक्टर है ना बहुत लोग, बहुत आत्माएं हम में से हीरो एक्टर हैं इस सृष्टि के, जिन्होंने चारों युगों में हीरो पार्ट बजाए हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जो लोग इतिहास को जानते हैं उन्हें पता है कि भारत के इतिहास में कौन कौन हीरो एक्टर रहे हैं, वो सब यही हैं, क्योंकि वो पुनः बाबा से अपने अंदर शक्तियां, धर्म की शक्ति, चरित्र की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, मनोबल बढ़ाना, ये सब यही कर रहे हैं, जो द्वापर युग के बाद भी उनके काम आएगा। तो कल आप सभी बाबा से मिलके आनंदित हुए हुए, यह सोचते रहे बाबा एक ही बात कह रहा बार बार, क्या हो गया बाबा को, नहीं सोचते हैं, जो सोचते हैं वही मैं बता रहा हूँ। कई तो मजाक कर रहे थे, हमारा बाबा भी बूढ़ा हो गया। मैंने कहा नहीं, बाबा कभी बूढ़ा होता ही नहीं, वो एक ही तो है जो बूढ़ा नहीं होता। एवर ग्रीन, एवर हेल्दी, एवर एनर्जेटिक, वो तो अब उसका क्योंकि पार्ट पूरा हो रहा है तो अब उसको साइलेंट होना ही है। जैसे बाबा ने जब शरीर छोड़ा, ब्रह्मा बाबा ने, हम तो छोटे थे, दादियां बाबा से पूछा करती थी, एक बात हमेशा पूछती थी, हमें छोड़कर क्यों चले गए, आपने तो कहा था अंत तक रहेंगे, ये रोज पूछा जाता था बाबा से, और बाबा इसके अलग अलग उत्तर देते थे। तो एक सबसे सुंदर उत्तर था कि जब तक सूरज आसमान में चमकता है तारे छिपे रहते हैं ना, हैं वो वहां, लेकिन वो चमक नहीं रहे हैं, उनका अस्तित्व जैसे है नहीं। और तो बाबा ने कहा ज्ञान सूर्य जस्ट दूसरे कमरे में गया है ताकि सितारे चमके। उसके बाद सितारे चमके और अब पुनः बाबा साइलेंट होगा तो हीरो एक्टर्स चमकेंगे। उनके द्वारा ये तीसरा फेज इस स्थापना के कार्य का अब चलेगा। इसलिए हम बाबा से बहुत आनंद लें, उसको बुद्धि के द्वारा अच्छी तरह जान लें, केवल भावना से नहीं बुद्धि के द्वारा हर रहस्य को जानते चलें, ताकि कहीं भी मन में क्या न हो, निश्चय का परीक्षा बहुत जबरदस्त और सूक्ष्म होगी। मुझे कभी कभी बाबा की कोई बात याद आती है जो मैंने शायद ही अब से 50 साल पहले सुनी हो साकार मुरली में, मुझे बिल्कुल वो धुंधली थी, पर अब उसको बिल्कुल क्लियर ख्याल में आती है वो बात। सुना दूं आपको, गहरी बात है, कोई ये सुन के कंफ्यूज ना होना। साकार मुरली में बाबा ने सारे ही रहस्य खोले थे, कुछ भी छुपाया नहीं, कुछ नहीं छुपाया, क्लियर फिलोसोफी। तो उसमें कहा था अंत में संपूर्ण निश्चय केवल 8 को ही होता है। ये अति गुह्य बात है, वो निश्चय अपने में, वो निश्चय बाबा में, और वो निश्चय ड्रामा के हर सीन में। ड्रामा कहने से वो समझ में नहीं आएगा, हर सीन आगे चल के ड्रामा अनेक रंग दिखाएगा। ये निश्चय के जो कुछ हो रहा है वो कल्याणकारी है, वही सत्य है। क्यों हो रहा है, बाबा के घर में भी क्यों हो रहा है, बाबा के बच्चों के साथ भी क्यों हो रहा है, ये डाउट नहीं। जाना तो सबको होगा ना, और कर्मों का हिसाब किताब भी सबको देना होगा, चाहे वो यज्ञ में हैं, चाहे यज्ञ से बाहर हैं। ऐसे तो नहीं ना कर्म गति यज्ञ निवासियों के लिए कुछ कंसेशन कर देगी, वो तो नहीं होगा ना कि चलो तुम्हें छोड़ देते हैं थोड़ा, तुमने यज्ञ की बहुत सेवा की है, तुम्हें थोड़ा मुक्त रखते हैं। ये पार्शियलिटी कर्म गति में किसी के साथ भी नहीं होती है। अब मैं चर्चा करना चाहता हूं कल की सवेरे की मुरली पर, थोड़ी सी प्योरिटी पर कर लें, घबराएंगे तो नहीं, क्योंकि जब हम प्योरिटी पे बात करते हैं तो बहुतों के चेहरों पे उदासी आने लगती है, इसलिए मैं थोड़ा कम करता हूँ वो बात, कभी कभी करता हूँ, पर ये क्लास हमारी घरेलू क्लास है, ठीक है कर ले। कल बाबा ने कहा तुम्हारे जैसी पवित्रता न किसी महान पुरुष की न धर्मात्मा की किसी की नहीं हुई है। हमारी प्योरिटी सचमुच इस संसृष्टि के लिए वरदान है, और इस संसार को भी और बाबा को भी कुछ बहुत पवित्र आत्माओं की जरूरत है, बहुत पवित्र। हम ये जानते हैं कितनी आत्माएं बहुत पवित्र बनेंगे, लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप कहेंगे तो उन्हें ही बन जाने दो, हम तो ऐसे ही ठीक हैं। मनुष्य की आदत है ना, नेचर है, वो सोचता है कि जब हमें बनना ही नहीं है तो छोड़ो ना, क्यों इस परेशानी में हम जाएं कभी भी। लेकिन नहीं, हमारे प्योर वाइब्रेशंस इस संसार में न जाने क्या क्या चेंजेस लाते हैं, हमें कुछ पता नहीं चल सकता। अभी वो एक मूवी की बहुत चर्चा है ना कि धरती का क्या क्या, दोनों ध्रुव पर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या क्या कम होता जा रहा है, इनको फिर से बैलेंस में कौन सी शक्ति लाएगी, प्योरिटी की। ये जो कुछ असंतुलन हुआ है प्रकृति में, कलयुग के अंत में आते आते बहुत असंतुलन हो गया है, इस सब को पुनः संतुलित करेगी हमारे प्योर वाइब्रेशंस। ये बात सभी अब भी समझ लें और बहुत गहराई से ये बात समझ में आती जाएगी। मुझे तो किसी ने अभी और बताया, रिसर्च होती रहती है ना, नहीं नहीं अभी वो कितनी परफेक्ट होंगी वो तो आगे चल के देखेंगे, कि धरती में बहुत सारा सोने का पानी अब दिखने लगा है, सोना पानी के रूप में। तो मैं बहुत पहले से लोगों को कहा करता था, जब हम पढ़ के आए थे तो हमें बहुत सारी चीजें जरा याद थी अच्छी तरह से, अब तो कुछ याद नहीं है। केमिस्ट्री में था कि किसी भी एलिमेंट का यदि एटॉमिक नंबर बदल दिया जाए तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में बदल जाता है, माना लोहा सोने में बदल सकता है, उसका अगर एटॉमिक नंबर बदल दिया जाए, हर एक जो एलिमेंट है तत्व है उसका एक एटॉमिक नंबर होता है। अब उसको बदलने के लिए बहुत जबरदस्त एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उतनी एनर्जी पैदा नहीं की जा सकती। लेकिन जब एटम बम का विस्फोट होगा तो क्या होगा, वो एनर्जी बहुत ज्यादा पैदा होगी और उससे इस सृष्टि पर अनेक परिवर्तन होंगे। ये बात जब वैज्ञानिक बताएंगे तभी हमारी समझ में पूरी आएगी। अब हम लोग इस पे ज्यादा कुछ न सोच सकते। बहुत सारे बम्स का विस्फोट धरती के अंदर कर दिया जाएगा और उससे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि न जाने क्या क्या परिवर्तन इनसाइड द अर्थ हो जाएंगे। तो जो विनाश का सीन हमें हमारे सामने आएगा वो बहुत कल्याणकारी होगा नई दुनिया के लिए, वो नई दुनिया को स्थापित करेगा और धन धान से सृष्टि को भरपूर करेगा। उसमें योग का बल और प्योरिटी का बल दो ही बल हैं संसार में सबसे बड़े, जिसके आगे विज्ञान भी सिर झुकाएगा। ये दोनों बल हम सबके पास हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जो जितने पवित्र वो उतने ही श्रेष्ठ और सरल योगी, सहज योगी। और जैसे जैसे हमारा योग का अभ्यास बढ़ता जाएगा हमारी ये प्योरिटी सूक्ष्म होती जाएगी, कर्मेंद्रियां शीतल, अंग अंग शीतल और सुगंधित, मन भी स्वच्छ, स्वप्न भी स्वच्छ, दृष्टि भी स्वच्छ होती जाएगी। ये देह के आकर्षण जो सबसे बड़े हैं संसार में और बड़े नेचुरल हो गए हैं, इसका कारण है कि सबकी देह पतित है, पतित देह आकर्षित कर रही हैं आत्माओं को। इसलिए जिन्हें प्योरिटी का बहुत बल बढ़ाना हो वो सभी आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करें, बहुत अच्छे अभ्यास की जरूरत। कोई भी घबराए नहीं कि हमारी प्योरिटी बहुत लो है, हम बहुत पवित्र नहीं हैं, हम फेल होते हैं, बाबा के बहुत बच्चे फेल होते हैं, हमें उसके समाचार आते हैं, पता चलता है कि बहुतों में वासनाएं तीव्र होती हैं, वो अपने को कंट्रोल नहीं करते। कोई तो शराब पी लेते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए, लेकिन शराब से वासनाएं कंट्रोल नहीं होंगी, क्या होगा, बढ़ेंगी। ये सभी भाइयों को पता होना चाहिए, भाइयों की ये समस्या है। जब उनकी वासनाएं फोर्स करती हैं तो परेशान होकर शराब पी लेते हैं, बाबा के बच्चे भी। ये नहीं करना है, प्रभु आज्ञा का उल्लंघन हो गया। योग बल से अपनी प्योरिटी को नेचुरल करना है, इसलिए योग बल ईश्वरीय सुख भी बहुत देता है हमें, उसके मिलन का अनुभव भी कराता है और आत्मा को पावन भी करता है। योग बल के बिना संसार में कोई भी मनुष्य प्योरिटी का आनंद नहीं ले सकता, उसे इम्प्योरिटी अपनी ओर आकर्षित करेगी ही, चाहे बहने हो या भाई हो, कन्याएं हो या कुमार हो, अधर कुमार हो, कोई भी, इसमें किसी के लिए कुछ और बात नहीं, वासनाएं सबके अंदर फुल फोर्स से हैं, जिसको बाबा के शब्दों में संसार में काम की आग लगी हुई है। और अब समय कौन सा आ गया है, जब ये पांचों विकार फुल फोर्स से वार करते हैं, चारों वातावरण में भी विकारों के वाइब्रेशंस हैं, उनका इफेक्ट भी मनुष्य पर आता है, लेकिन आप इससे परेशान नहीं होंगे, कुछ अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, बहुत आनंद आएगा। अभ्यास से ये स्थिति बढ़ती जाएगी। भोजन, पानी, दूध चार्ज करके पिए, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इस संकल्प से भोजन, पानी, दूध को चार्ज करें, रात को चार्ज करके पिए, जो दूध पीते हैं दूध, नहीं तो पानी को चार्ज करके आप पिए। और जो मनुष्य, जो भाई बहने पवित्र भोजन खाएंगे, उनकी पवित्रता बहुत बढ़ती जाएगी। मुझे याद है 68 में जब मैं अभी समर्पित हो ही रहा था, दिल्ली में था, अभी हुआ नहीं था, तो एक मैसेज आया बाबा का। उन दिनों भोग लगाती थी संदेशी बहने, मैसेज आया बहुत सुंदर कि माताएं अगर पवित्र भोजन बनाएं तो आत्माओं को 50% पवित्र बना सकती हैं पवित्र भोजन से, क्योंकि भोजन हमारे देह में जाता है सीधा, वो अंग अंग को शीतल करेगा, कर्मेंद्रियों को शीतल करेगा। इसलिए माताओं का परम कर्तव्य है पवित्र भोजन बनाना। ये नहीं बस जरा सा बाबा को याद किया और फिर भूले, अब समोसे बनाने, अब पकोड़े बनाने, अब पूरी तलनी है, फिर उसमें लग गए। कम से कम ये धुन लगा दे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये संकल्प कर ले, हम बाबा के लिए बना रहे हैं। एक सूक्ष्म रहस्य माताओं के लिए, मान लो कोई माता भोजन बना रही है कि मेरे बच्चों को ये चीज बहुत अच्छी लगती है, कचौरी, आज हम ये बनाएंगे, और बनाया तो अब बाबा को भोग लगाएंगे पहले। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? बाबा इस भोग को स्वीकार नहीं करेगा, आपको उसका बल नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले संकल्प भर दिया कि बच्चों को ये चीज बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए कचौरी बनाती हूँ आज, बड़ी चटपटी चटनी भी अच्छी बना देती हूँ, फिर चलो बाबा को भोग लगा दे पहले। नहीं, ये बहुत अच्छे रहस्य हैं। साकार में जब बाबा थे भोग लगता था, तो हम जरा, क्योंकि भोग आदि बनाने में, तो एक बहन जो फूल रख रही थी, उसने फूल को सूंघ लिया कि खुशबू वाला रखूं, बिलनी की तरह सबरी सबरी, तो वो रिजेक्ट हो गया, ये फूल भोग पे नहीं रखा जा सकता। इन सूक्ष्म रहस्यों को जानते हुए बाबा को अपने किचन में आह्वान करें, आ जाओ, ये भोजन आपके लिए बन रहा है, ये फीलिंग भर दें बिल्कुल अपने अंदर, फिर भोजन बनाएं और उसको पवित्र करें, दृष्टि देकर, अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस देकर। बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस है, करें, जिनको अपनी प्योरिटी को बहुत बढ़ाना है, या मधुबन में रहते हुए करेंगे, जिसको भी हम देखें उसे पवित्र वाइब्रेशंस दें, आत्मिक दृष्टि और पवित्र वाइब्रेशंस देना। दिन में अगर 5 बार भी आपको ये बात याद आ जाए तो बहुत अच्छा अनुभव होगा। अपने देह को भी प्योर वाइब्रेशंस दिए जा सकते हैं और इस संपूर्ण प्रकृति को भी प्योर वाइब्रेशंस देने चाहिए। तो जैसे हम प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देंगे, रिटर्न में हमारी प्योरिटी बहुत बढ़ेगी। और सबसे फाइनल बात है कि हमें योग बल बहुत बढ़ाना चाहिए। 4 घंटे योग के बिना प्योरिटी संभव नहीं होगी। युद्ध चलता रहेगा मन में और उस युद्ध में फिर जीवन का आनंद खत्म हो जाएगा, सुख नहीं मिलेगा। सच्चे मन से किसी को नहीं कह सकेंगे कि पवित्र बनो, अधूरापन रह जाएगा। कहने वाला सोचेगा मैं ही नहीं हूं पूरा, ये कैसे बनेंगे, तो वाइब्रेशंस ही नहीं जाएंगे। तो कुमार सभी चाहेंगे पहले कुमार साधनाएं करके बहुत अच्छी प्योरिटी, ये योगदान करेंगे इस सृष्टि को, इस प्रकृति को, बाबा को ये सबसे बड़ा सहयोग होगा कि हम उसके कार्य को सफल करने के लिए प्योर वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाएं। और बिल्कुल अच्छी तरह जान लें, मैं बहुत पहले एक चीज पर बहुत ध्यान दिया करता था, कहीं भी अगर एक्सीडेंट हुआ है, बात हुई है, तो उसके पीछे काम कर रही है इम्प्योरिटी। मैंने बहुत केसेस देख लिए, क्योंकि उनका मुझे पता होता था, वो ये बात बाहर तो कही नहीं जा सकती थी। अब एक्सीडेंट हो गया तब तो कुछ बोला भी नहीं जाता, तब तो उन्हें मदद ही करनी होती है। लेकिन हर एक्सीडेंट के पीछे इम्प्योरिटी मूल रूप से जिम्मेदार रहती है। विघ्न जिसके जीवन में बहुत आते हैं उसको भी समझ लेना चाहिए, कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी काम कर रही है। जहां प्योरिटी का बल है वहां जीवन विघ्नों से मुक्त होगा। इसलिए सभी अपनी प्योरिटी को बढ़ाते चलें। ये किसी के हाथ में नहीं कैसे बढ़ाएं, वो कोई स्थूल चीज नहीं है कि बढ़ाओ उसे, ये योग बल से ही होगा। जो आत्मा सवेरे उठकर प्रभु मिलन का परम आनंद प्राप्त करती हैं, उनका चित्त पवित्र होने लगता है। हमें ईश्वरीय सुख चाहिए बहुत, तब ये सांसारिक सुख हमें छोड़ेगा, हमारी बुद्धि उससे हटेगी, अन्यथा ये कर्मेंद्रियों का रस आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ईश्वरीय सुख सवेरे और फिर मुरली से, साथ में बहुत दृढ़ता भी। बाहर जो लोग रहते हैं संसार में, उनका फ्रेंड सर्किल होता है और उसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो प्योरिटी आदि को बेकार की चीज मानते हैं, ये तुम कहां लग गए। युवकों को, कुमारों को वो अनेक बातें करते हैं, ये कोई तुम्हारा समय है क्या, जीवन है क्या, पवित्र बनना ये तो बूढ़ों का काम है और बूढ़ों के बस का नहीं है। हंस लो अच्छी तरह, अंदर रोक लिया आपने अपनी हंसी को, मैं आपको सीरियस नहीं बनाना चाहता, इसमें बूढ़े जवान की बात नहीं, चाहे कोई बूढ़ा हो, वासनाएं तो सबके अंदर इक्वली इफेक्ट कर रही हैं। इसलिए जब हमने प्योरिटी का मार्ग चुन लिया, चिंतन स्वचिंतन परम आवश्यक, जब हमने प्योरिटी का मार्ग चुन लिया तो उसके विपरीत जो मार्ग हैं उनकी तरफ घूमकर नहीं देखना है। सभी भाई बहनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट धारणा, चिंतन को अपने बढ़ा दो, प्योरिटी ही हमारा मार्ग है, अब इम्प्योरिटी का मार्ग हमने छोड़ दिया है, उसकी ओर देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं है। तीन चीजें हमारे आयुर्वेद वाले डॉक्टर भी बैठे हैं, तीन चीजें आयुर्वेद की हम बचपन से सुनते आते थे ब्रह्मचर्य के बारे में। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को हार्ड वर्क भी करना चाहिए ताकि एनर्जी यूज होती रहे। जो लोग ठंडे हैं, जो सुस्त हैं, जो काम नहीं करते, उनके अंदर इम्प्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी। दूसरी चीज मनन चिंतन, मनन चिंतन में हमारी एनर्जी बहुत यूज होती है। जैसे हम सब जानते हैं, किसी मनुष्य को चिंता लग जाए शरीर कैसा होने लगता है, सूख जाता है ना। एक हंसी कहानी सुना दूं, एक मोटी माता डॉक्टर के पास पहुंची, मुझे अपना वजन कम करना है। डॉक्टर ने सब कुछ देख के पूछ पाछ के उसको हंसा बहला के कहा, अरे क्यों परेशान हो रही है, मैं सब देख लिया, तुम्हारी जिंदगी 40 दिन की है बस, छोटो जैसे भी है, 40 दिन के बाद तुम रहोगी नहीं। अब माता घर आई परेशान, चिंताओं में, न खाना खाए, सबको बता दिया 40 दिन बस मेरा जीवन है, 35 हो गए, 36, 37, 38, 40, पतली हो गई, सूख गई, पहुंच गई। अब 41वां दिन आ गया, गुस्से में पहुंची डॉक्टर के पास, तुमने मुझे परेशान क्यों किया, मैं तो मरी नहीं। कहा मरी नहीं पर पतली तो हो गई, ये दवाई थी उसकी। तो चिंता में चिंता में एनर्जी लग गई ना, ऐसे ही चिंतन में एनर्जी बहुत लगती है। चिंतन, इसलिए पवित्र आत्माओं को चिंतन बहुत अच्छा रखना चाहिए। अगर कोई कहे कि मेरे से तो चिंतन होता नहीं, ये बात गलत है। कोई आपको कुछ बुरी बात कह जाए, 4 दिन तक चिंतन करते हैं उसका, मुश्किल हो जाता है चिंतन बंद करना, है या नहीं? चिंतन शक्ति हर मन में है, उसको उसकी दिशा बदलनी है। उसकी दिशा हमने व्यर्थ की ओर की हुई है, अब उसको ज्ञान की ओर कर दें, तो ये ज्ञान चिंतन आत्मा को, वो जो एनर्जी है अंदर में पवित्रता की, वो यूज होती रहेगी और वो कष्ट नहीं पहुंचाएगी। और तीसरी हमारे पास सबसे सुंदर चीज है, लोग उसको नहीं जानते, वो योग बल। बुद्धि ऊपर लगी ना, योग अभ्यास के लिए भी ब्रेन को एनर्जी यूज करनी पड़ती है, ये सबको जानना चाहिए। इसलिए जिनके कमजोर ब्रेन हैं, वो योगी नहीं बन सकते। किसी डिप्रेशन के व्यक्ति को आप कहो जरा योग कर लो, परेशान हो जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा उसको 2 मिनट में ही। इसलिए ये 3 चीजें जो अपनाते हैं, योग अभ्यास, मनन चिंतन और अपने को अच्छे वर्क में व्यस्त रखना, खाली नहीं रखना, उनके लिए प्योरिटी सरल होती जाती है। तो हम सभी आज ही बहुत अच्छा चिंतन करके सोएंगे। हम जिस मार्ग पे चल पड़े हैं, अब मंजिल पर पहुंचना ही है। और हमें अब जब एक बार हमने ये मार्ग चुन लिया, तो अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अपने को दृढ़ करना होता है, क्योंकि युद्ध माया से है। हम ये सब जानते हैं कि केवल प्रतिज्ञा कर लेने से काम नहीं चलता। रोज अपने में दृढ़ता लानी पड़ती है, ताकि हम अपने को डिटैच रखें संसार के आकर्षणों से, देह के आकर्षणों से, कर्मेंद्रियों के रसों से। तीसरा संकल्प करेंगे, मुझे बाबा के इस महान कार्य में प्योरिटी का सहयोग देना है, सहयोग करना है, तो बाबा की बहुत मदद मिलती रहेगी और ये मार्ग सरल हो जाएगा। किसी किसी में ये इम्प्योरिटी ज्यादा रहती है और किसी में बहुत कम। तो योग साधना से इसको बिल्कुल 0 पर लाना है। सभी अपने को तैयार कर दें। और एक लास्ट बात मैं और अच्छी आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं आत्मा हूं परम पवित्र, अपने को देखेंगे मस्तक के मध्य में, मुझसे सफेद किरणें फैल रही हैं। परम धाम में बाबा पवित्रता के सागर, उनकी पवित्र किरणें मुझे आत्मा में आ रही हैं और आत्मा से ब्रेन में और पूरे देह में फैल रही हैं। योग में मजा भी बहुत आ जाएगा। 3 मिनट करें, 3-4 बार कर लें दिन में, बहुत आनंद आएगा। जैसे पवित्र किरणें फैल रही हैं, ब्रेन भर गया है, फिर नीचे फैलने लगी, दाएं हाथ में, बाएं हाथ में, पूरे देह में, टांगों में फैल गई हैं, एक एक अंग को, अंग अंग को शीतल करती जा रही हैं, सुखद फीलिंग हो रही है। ये भी अभ्यास हमारी प्योरिटी को बहुत बल देगा। और एक बात याद आ गई, प्योर एनर्जी ही सबसे बड़ी हीलिंग एनर्जी है, रोगों को ठीक करने वाली शक्ति है। इसलिए हमें दूसरों को भी मदद करनी है, ये प्योर वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाकर। और आगे वो समय आएगा कि जिनके पास ये प्योरिटी का बहुत बल होगा, वो दूसरों पर दृष्टि डालेंगे और वो निरोग हो जाएंगे। डॉक्टर्स को तो ये काम बहुत करना होगा, दूसरों पर पवित्र दृष्टि डाली और रोग समाप्त। ये बाबा की ब्लेसिंग भी हम सब आत्माओं को मिल जाएगी। तो कोई इसमें निराश ना हो, ये नहीं कि हम तो बहुत कच्चे हैं इसमें, अब क्या करें। जहां भी आप हैं वहीं से इस शक्ति को बढ़ाएं, तो आपका परिवार भी बहुत सुखी होगा, जीवन विघ्नों से मुक्त होगा, और जो ये बहुत मारामारी संसार में अब चल रही है और चलने वाली है, ऐसे ऐसे दुख बढ़ते जा रहे हैं जिनका निदान किसी के पास होता ही नहीं, उलझता जाएगा मनुष्य, संसार उलझता जाएगा बहुत ज्यादा। हमारे ये प्योर वाइब्रेशंस अनेक मनुष्यों को मुक्त करने में मदद करेंगे। ठीक है, तैयार? सभी तैयार? डरने की बात नहीं, बढ़ना है आगे। ये मार्ग ही ऐसा है, युद्ध का मार्ग है ना ये, इसमें घबराना नहीं होता है, निरंतर आगे बढ़ेंगे और इस संकल्प को अपने मन में बहुत रखेंगे, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, तो विजय की शक्ति जागृत रहेगी। चले अब बाबा से पवित्र किरणें लेंगे, जैसे कि ऊपर से बाबा की पवित्र किरणों की बरसात होने लगी हमारे ऊपर।
प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान।